नियम सार कारण कार्य नियम लेक्चर नंबर 85। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो अच्छायाणं। नमो लोए सौवसाहूणं। नमिऊणजिनं वीरं अनन्तवर्णानदं सनसहावम्। वोच्चामि नियमसारं केवली सुद केवली बणिदम्।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभु मलधारी देव जी ने टीका लिखी है तात्पर्य वृत्ति, और इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन हुए हैं, और इन पुस्तकों का नाम है कारण कार्य नियम। दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 70 पर हम आगे 70 नीचे का पैराग्राफ वहां से हम पढ़ेंगे। हाँ शोभा बोलो। अब सुनाई दे रहा है क्या? हाँ अभी हम पेज नंबर 70 पेज 70 नीचे का पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे। सुना ना? हाँ चलो। अरे दान पूजा मां कहीं संवर निजरा तो कहो भाई, ये बहु करे छे हो। क्या कहे? दान पूजा उपवास उसमें निर्जरा होती है ऐसा कहने वाले हैं? ऐसा है ना, बहुत निर्जरा होती है तो बहुत तप करो। तप करना यानी उपवास करना, इतना ही तप का लक्षण हमने समझा। ये तो तप कहो या जो समाधि कहो, जो कुछ होता है वो अपने अंतर में, क्योंकि आत्मा जुदा है और शरीर जुदा है, तो शरीर में जीव का तप होगा क्या? जीव की पर्याय कहाँ होगी? जीव में होगी। तो जीव में कुछ हुआ कि नहीं हुआ वहां पर? तो जीव ने अपना अनुभव करके अपने में स्थित रहा, उसको तप कहेंगे, और उससे निर्जरा होगी। केवल भूखा रहने से निर्जरा नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं कि ये बाकी लोग कहते हैं ना, दान पूजा मां कहीं संवर निर्जरा तो कहो भाई, ये बहु करे छे हो भगवान, तने भगवान ना बेटा ने खबर नथी, यानी मार्ग की उसको पता नहीं, मार्ग पता नहीं है क्या है, और ऐसे ही सुन रखा है और ऐसा ही माना है, उस पर विचार नहीं किया स्वयं और अभ्यास भी नहीं था। ए परमात्मा पोते एक समय नो प्रभु, यानी एक समय में त्रिकाली परिपूर्ण भगवान आत्मा विराजमान है उसकी बात कर रहे। परमेश्वर दिव्य ध्वनि द्वारा पोकार करे छे, इंद्रनी मध्यमा करोड़ों मनुष्यों ना ध्वनिमा एम आवे भाई, ध्वनिमा ने दिव्य ध्वनिमा। तू तो अखंड आनंद नो कंद बनेलू तत्व छोने बनेलो, ने वो तो ऑलरेडी है, आनंद का कंद है वो, एवं तारू स्वरूप छे ने भाई, एनी ऊपर रुचि कर, उस पर रुचि करना है, तो रुचि करने से वो मार्ग होगा, सरल हो जाएगा, फिर निमित्त मिलेगा कि नहीं वगैरह चिंता की जरूरत नहीं, वो सब मिल जाएगा। हाँ तुम्हें बोलना है तब मैं ये लगाऊंगी। हाँ भाई तू तो अखंड आनंद नो कंद बनेलू तत्व छो ने, एवं तारू स्वरूप छे ने भाई, एनी ऊपर रुचि कर, बाकी बधु आवे ते जानवा जेवु छे, आदरवा जेवु नथी। बधु आवे ने वो बाह्य में जो कुछ विकल्प आने हैं जिस भूमिका में है वैसे उसको राग विकल्प होगे, उससे भिन्न तत्व है, ये कहना चाहते हैं। आते काई बात इन्हें अनेकांत न केवाय कहे, कहे नहीं सामने वाले कहते, एकांत कहते उसको, इतने भाषा में एम आवे, व्यवहार उपादेय छे एम आवे, पण खरेखर आत्माना स्वभावनो शुद्ध ध्रुवना उपादेय सिवाय एनी प्रकटेली पर्याय पण जहाँ प्रकटवा योग्य छे ए उपादेय नथी। क्या कहते हैं? जब तक स्वभाव को उपादेय नहीं बनाया, उसका आश्रय नहीं लिया, उसके सन्मुख होकर जानते नहीं रहे, तो जो पर्याय प्रकट करने योग्य जो कही थी संवर निजरा और मोक्ष की, करने योग्य तो पहले बताई थी, तो कहते वो भी उपादेय नहीं है। उपादेय क्या है? आलंबन किसका लेना है? ध्रुव, ध्रुव स्वभाव भाव का, क्योंकि उसके आलंबन लिए बिना वो संवर निजरा प्रकट ही नहीं होगी। एवो भगवान प्रकट निर्भेद, वो निर्भेद उदित ऐसा शब्द आया था, प्रकट निर्भेद भेद, हाँ भेद विनानी चीज छे आ गुणी अने आ एनो सुख गुण एवं जेमा नथी। क्यों नहीं है ऐसा? नहीं नहीं, वो भेद हो जाएगा, ये स्वभाव और ये उसका स्वभाव, ऐसा भी भेद नहीं, बस अखंड, कोई भेद नहीं है। जो भेद की चर्चा, जो हमें मालूम नहीं था वस्तु कैसी है, तब कहेंगे ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सुख है, ये वीर्य, इसे भेद कर करके समझाए कि इतने अनंत गुण हैं। अभी हमने वो 47 शक्तियां देखी, तो उसमें भी इतने अलग अलग गुणों के द्वारा वर्णन किया, परंतु वस्तु कैसी? अखंड अभेद एक वस्तु है, उसमें ऐसे टुकड़े नहीं है कुछ। इसलिए क्या कहा यहाँ पर? वस्तु ने एनो आ गुण सुख एवो जेमा भेद नथी। भेद का निषेध है, सुख नथी एम नथी कहूं, सुख नहीं ऐसा नहीं कहा, भेद नहीं है, ये द्रव्य और उसका ये गुण, ऐसा भेद उसमें नहीं है, क्योंकि भेद ऊपर लक्ष्य जाता है तो वो राग हो जाता है, वहां पर विकल्प हो जाते हैं। भाई ए ऊपर जरी लक्ष्य गयू निर्भेद उदित छे ने, एटले निर्भेद उदित एवो सुखनो बने लो, यानी वो उसका सुख जुदा, वो जो द्रव्य जुदा, ऐसी भी बात नहीं, उस सुख से ही बना हुआ है। एटले एक गुण ने जुदो पाड़े ने आवो गुण, तो कहे छे के बापू ए गुण जे कीधो ने तो ए निर्भेद एक रूप ज वस्तु छे, वस्तु को उस गुण के द्वारा बताए, परंतु वो अभेद अखंड एक है, ऐसा कहते हैं। एमा वड़िया आनंद गुण छे अने एनो धरनारा आत्मा छे एवो भेद पण नथी। एवा आत्मानी भाई तू रुचि केम करतो नथी, देखो करुणा करके बार बार बता रहे, तो ऐसा क्यों नहीं करता? उसमें ही पूरा कल्याण है, इतनी ही बात में जीव का पूरे पूरा कल्याण है, उसी से मोक्ष मार्ग शुरू होगा और उसी से मोक्ष होगा। एवा आत्मा मां तू रुचि केम करतो नथी, भाई एमा रुचि करवा जेवी चीज तो, पोषणनी चीज तो आ छे। पोषण समझो छो? अमारी काठियावाड़ी भाषा छे, वेपारी ने माल देवो हो तो पोषण नो माल कहवाय। पोषण नो एटले 4 रुपये मण मेथी मळती होय, घऊ लियो ने, घऊ तो अत्यारे 4 रुपये क्या मळे, मेथी पण नहीं मळती होय, आ तो पहेलानी वात छे। 20 रुपये मण लियो ने भाई, तमारे जे होय त्यांथी 20 रुपये मळता होय, 1 रुपयो खर्च होय अने पछी 22 रुपये वेचाता होय, तो ए माल वेपारी ने पोसाय, एने फमके ने परवड़ता है, पोसाय। 20 रुपये त्यां ले अने रुपयो चढ़े अने वेचाय 20.5 रुपये, तो ए माल पोसाय, एनु नाम अहीं पोसाय। ए अमारी काठियावाड़ी भाषा छे, ऊपर बताए ना, पोषणनी चीज तो आ छे, परवड़नारी। वाणियाने पोसाय त्यांथी माल लावे, घऊं जहाँ पाकतो है त्यांथी लावे, मेथी जहाँ पाके त्यांथी लावे, ऐ पित्तल जहाँथी थातु होय त्यांथी लावता हशे ने, थामड़ा ठीकरा फिकरा जहाँ सूंधू मळे त्यां ए होय, त्यां ज होय। अमुक ठेकाने मेथी पाके, अमुक ठेकाने मरचा बहु पाके, आम ठगलाना ठगला, आ उगामेड़ी लेव ने, मरचा, मरचा गाँव का नाम है, लेवा माटे बधा त्यां आवे। मुमुक्षु ने कुछ पूछा है, उत्तर में कहते हाँ त्यां बहु मरचा, एकली मरचा नी गंध मारे, ઉગામેડી ત્યાં મેથીનો પાક અમુક ઠેકાણે છે એ અમારા બધા વેપારી જાણે. ઘઉં ફલાણે ટેકાને તે લાવવા, મગની દાળ ક્યાંકથી લાવવા, એવું બધું જાણે. શું કહેવાય, બીડીના પત્તા પાંદડા વાત ને તમાકુ કે પત્તે, હા એના બે પ્રકારના નામ આવે છે ને, એક ટીમરું અને એક આપટો. એને બહુ ઘણી હવે વહા તો અમે લગતા છોટે છોટે ગાંવ મેં, મગર ધંધા તો કેટલા વેપાર હોતા હોગા ઉસ સમય એ મનો મનો કી બાત કરતે ઇતની. એ પછી ક્યાંક સોંધો પાકતો હોય સોંઘો, ત્યાં બધા જાય, એ પોસાય તો જાય નહીતર ન જાય. અહીં પોસાય એવું કંઈ અહીંયા કહે છે ભાઈ, એવું પોસાય ક્યાં હોતા એવું સમજાને કે લે એ સબ ચર્ચા કી ઉન્હોને. હમ ભી દેખતે કહાં સસ્તા મિલતા હૈ, અગર બિઝનેસ કરના હૈ તો જહાં સે સસ્તી મિલતી વહાં સે લાયેંગે ઓર ફિર અપને બીચ કા અપના માર્જિન રખે વો બેચેંગે. આવો ભગવાન આત્મા નભમંડળ સમાન આકૃતિ વાળો અર્થાત નિરાકાર અરૂપી છે. જો દાખલો કેવો આપ્યો છે, આકાશનું મંડળ સર્વવ્યાપક એક છે ને, આકાશનું મંડળ સર્વવ્યાપક એક ચીજ સર્વવ્યાપક વ્યાપક એની પેઠે ભગવાન આત્મા અણકરેલું તત્વ છે, કોઈને બનાયેલા નહીં એ. હા નીચે છે, જો અકૃત કોઈથી નહીં કરાયેલો, કોઈ એનો કરતા બરતા ઈશ્વર નથી, એવું એ શુદ્ધ ધ્રુવ તત્વ છે. કિસી ભી દ્રવ્ય કો કિસી ઈશ્વરને બનાયા હી નહીં હૈ. જ્ઞાયક ભાવ એક સમયનો પરમાનંદ મૂર્તિ, બારંબાર એક સમયનો, એક સમય મેં કીધે પ્રત્યેક સમય મેં એવો પરિપૂર્ણ ભગવાન આત્મા હૈ, એટલે એક સમયનો કહે રહે. ત્રિકાલ તીન કાલ કે સમય મિલકર હુઆ હૈ એસા નહીં હૈ. હા વો કાયમ હૈ 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 હૈ. જેમ આકાશને કોઈએ બનાવ્યું નથી તેમ આત્માને કોઈએ બનાવ્યું નથી. કોણ બનાવે, સત છે ને કોણ બનાવે, સત છે છે તો છે છે છે, બનાને કા સવાલ હી નહીં, ઉસકો કોઈ બિગિનિંગ હી નહીં હૈ. તો ઇસ છહો દ્રવ્ય સત સ્વરૂપ હૈ, ઉનકો બનાને વાલા કોઈ હૈ નહીં. આત્મા અંતર્મુખ, એ સ્વભાવ કો અંતર્મુખ કહા થા ઓર યે પર્યાય વાલે તત્વ બહિર્મુખ કહેતે ઉનકો. આત્મા અંતર્મુખ પ્રકટ અતિન્દ્રિય સુખનો પિંડ છે, પ્રકટ હૈ વો સાક્ષાત વિરાજમાન હૈ, પ્રત્યક્ષ વહા હૈ. આત્મા અંતર્મુખ અભેદ અતિન્દ્રિય સુખનો પિંડ છે, સ્વયં સિદ્ધ શાશ્વત છે. સ્વયં સિદ્ધ તો હૈ હી હૈ ઓર શાશ્વત અનાદિ અનંત રહેને વાલા હૈ. મને પંચાધ્યાયી કે મંગલાચરણ મેં ભી હમ ગાતે થે ને, લ્યો સ્વયં સિદ્ધ શાશ્વત છે એના ભાવમાં જ્ઞાનના ખ્યાલમાં આવું તત્વ છે એવું પહેલું ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ. આવીને પછી અંતર્મુખ રૂચિ કરવા જેવું એ છે એમ કહે છે. અને એક બાર વો ખ્યાલ મેં આને કે બાદ બારંબાર ઉસી કી રૂચિ હોકર બારંબાર અંતર્મુખ પરિણામ હોતે રહેતે હૈ. અબ પૃષ્ઠ સંખ્યા 72 પર આના, ચૈતન્યામૃતના પૂરથી ભરેલું જ એનું સ્વરૂપ છે. ચૈતન્ય ને જ્ઞાન દર્શન ઇસકો મિલકર એક શબ્દ હૈ ચૈતન્ય, ઓર વો અમૃત હૈ તો ચૈતન્ય રૂપી અમૃત ઉસકો ચૈતન્યામૃત કહે દિયા. તો ચૈતન્યામૃતના પૂરથી ભરેલું જેનું સ્વરૂપ છે, જેનું ચૈતન્ય રૂપી અમૃત ચૈતન્ય અમૃત એનું પૂર છે, દળ છે ને, ચૈતન્ય અમૃતનું દળ છે, સ્વભાવ છે, સત્વ છે, ભાવરૂપ એકરૂપ સત્વ સ્વભાવ છે. એથી ભરેલું એટલે ચૈતન્યામૃતના પૂરથી ભરેલું, યહાં કહેતે સુખ સે બના હુઆ, ચૈતન્યામૃત કે પૂર સે ભરા હુઆ. વળી કોઈ એક કોઈ વાસન હોય અને એમાં દૂધ રહે એમ હશે, એને ક્યાં એસા હોતા હૈ. જૈસે થેલી મેં હમને સબ્જી ભરી ગેહું ભરે, એસા હોતા હૈ દ્રવ્ય મેં ગુણ, એને ઉપર કોઈ ઉસકો કવરિંગ હૈ ઓર ફિર અંદર ગુણ ડાલે, એસા હોતા હૈ કૈસે હોતા હૈ, ગુણ કૈસે હોતે હૈ, ગુણ કી પરિભાષા યાદ હૈ ક્યા. હા ઉસકો એને એ દ્રવ્ય હૈ तो उसका एक एक गुण, प्रत्येक गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी जितनी अवस्थाएं उसमें रहने वाला, उसको गुण कहते हैं। तो एक गुण संपूर्ण भाग में, दूसरा गुण संपूर्ण भाग में, तीसरा गुण संपूर्ण भाग में, यानी गुण एक दूसरे से जुदा कर ही नहीं सकते, प्रत्येक गुण संपूर्ण भाग में है। ख्याल में आई थी ना, यही बात यहाँ कह रहे कि कोई एक वासन हो ने माँ दूध रहे एम हसे आ, ये पूछ रहे आपको। तो हमें सोचना है क्या ऐसा हो सकता है, जैसे बर्तन में हमने दूध रखा है ऐसे द्रव्य में गुण है क्या? बोलो, नहीं मालूम। गुड़ किसको कहते? गुड़ गुड़ मीठा होता है वो, हाँ शक्कर से बना है। देखो देखो, गुड़ की एक दल्ली है, तो गुड़ को किसको कहेंगे? वो जो इसे पीला रंग का है, जो मीठा है, उसमें जितने गुण है वो सब, चिकना जो कुछ है सब बता दो। तो गुड़ नाम की कोई वस्तु ऐसी होती कि कोई कवरिंग है उसके अंदर गुड़ है, ऐसी वस्तु होती है? तो गुड़ है, ऐसा द्रव्य तो द्रव्य है। तो ये क्या पूछा? जैसे बासन जुदा है और उसमें दूध जुदा है, ऐसे द्रव्य से गुण जुदे है क्या? क्या उसके अंदर भरे ऐसा है क्या? आप ही बोलो।
नहीं है, लेकिन हम पर्याय की अपेक्षा करते हैं, उसको अलग बताते हैं।
कुछ परिचय की अपेक्षा नहीं है, वो पर्याय की अपेक्षा, वो तो ऐसा बर्तन और दूध जैसा नहीं, ऐसा नहीं है, उसी में अंदर है, पर वो एक समय के लिए, इसलिए उसमें नहीं है कहते हैं। है तो पूरे भाग में, पर्याय भी पूरे भाग में है, गुण पूरे भाग में है, तो गुण का कार्य भी पूरे मां। तो जानना ये जब ज्ञान ये गुण है, तो द्रव्य के पूरे भाग में ज्ञान गुण है, तो हमारी जानने की पर्याय कहाँ चलती है? खाली इधर, तो पूरे भाग में। पर पूरे भाग में है फिर भी वो एक समय की है, इसलिए कहाँ वो ध्रुव यानी स्वभाव जुदा है और ये जुदी है, कहने की पद्धति अपेक्षा से बताए। ऐसे उसको प्रदेश की अपेक्षा ऐसा जुदा मत निकालो कि यहाँ द्रव्य का स्वभाव है और यहाँ उसकी पर्याय, ऐसा नहीं है। यहाँ बर्तन है और उसमें हमने ऊपर से दूध डाला और निकाला, ऐसा नहीं है। इसको कहते निर्णय, इसके बिना आगे कुछ नहीं, ये फंडामेंटल्स है। क्या कहते हैं यहाँ कि कोई क्वासन हो ने एमा दूध रहे एम हसया, ये प्रश्न हमको पूछ रहे, तो हमें उसका निर्णय करना है कि क्या क्या ऐसा हो सकता है। दूध माँ जेम सफेदाई भरेली छे ए अभेद छे, दूध और उसकी सफेदाई उस वो अभेद चीज है, मासन और दूध अभेद चीज नहीं है। साकर माँ जेम गड़पन भरेलू छे ए अभेद एक रूप छे, ए साकर अने गड़पन काई बे जुदी चीज नथी। समझ में आती बात? कोई प्रश्न है बोलो, पूछो। देखो, दूध, अभी हम दूध एक द्रव्य के रूप से, द्रव्य में कहने की पद्धति है वो, द्रव्य में गुण कहे तो वो द्रव्य अलग है, उसके अंदर भरा हुआ है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुण पर्यायवत द्रव्य, गुणों का पिंड ही द्रव्य है, पिंड कहो, खाली गुण का अनुभव नहीं होता है, द्रव्य का अनुभव होता है, वो द्रव्य का अनुभव होता है, वो अनुभव पर्याय में होता है, पर्याय द्रव्य को जान लेती उसको कहेंगे उसको अनुभव हुआ। आप में बहुत कंफ्यूजन है, देखो स्वभाव गुण को ही स्वभाव
कहते,
पर्याय जुदी है, एक गुण निकलते विकलते कुछ नहीं है, गुण उसमें है ही, गुण जैसे द्रव्य अनादि अनंत है। देखो अभी पुद्गल की बात करते हैं, पुद्गल में चार गुण है समझाने के लिए, है अनंत, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो स्पर्श निकलता है क्या होता है, तो इसमें से निकल जाए तो ये स्पर्श रहित हो जाएगा, स्पर्श रस गंध वर्णमय ही वो चीज है। अभी जीव की बात लो, ज्ञान दर्शन आनंद वो मय जीव है, जीव नाम का कोई कवरिंग होगा उसके अंदर ज्ञान भरा ऐसा है क्या? हाँ अभी सही समझो, अभी ये सब बातें संडे को चलेगी, तो आपको तो इस जब तक इसका निर्णय नहीं ना, कितनी भी बड़ी बातें करो, कितना भी कुछ करो, कुछ फायदा नहीं है। ये बेसिक है, द्रव्य का भी सब स्वरूप अभी मालूम नहीं, क्योंकि गुण और पर्यायों से बना हुआ ही द्रव्य है, वो जुदा नहीं है गुणों से। उसका एक गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, ऐसे अनंत गुण को हम अलग अलग गिनते हैं, इसलिए हम कथनचित अपेक्षावश उसमें भेद करते हैं, परंतु भेद तो है ही नहीं है। जैसे आम में है ना, आम में स्पर्श रस गंध वर्ण है, कौन सा स्पर्श है, वो नरम है, और उसका वर्ण कैसा है, पीला हो गया अभी, और फिर गंध कैसा है, वो जैसे आम की सुगंध है, स्पर्श रस कैसा है, वो मीठा है। अब ऐसा करो, स्पर्श आपके पास रखो, रस इनको दे दो, वर्ण इनको दे दो, और गंध इनको दे दो, ये हो सकता है क्या? वो चीज से वो चीजें जुदी नहीं है,
शोभा के
हाँ देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, साकर अने गड़पण कहीं बे जुदी चीज न थी। तो साकर, जब आप साकर कहते हैं शक्कर, तो उसमें कोई कवरिंग है अंदर, वो उसकी मिठास भरी है क्या? है शक्कर का एक वो डल्ली ले लो, पूरे में भरी है, उसकी सफेदपना भी पूरे में भरा है, उसका मीठापन भी पूरे में भरा है, जो हार्ड है उसकी हार्डनेस वो भी पूरे में भरी है, वो जुदा नहीं उससे, ये ख्याल में लेना। जैसे गोल्ड है, पर्याय जुदी है, गुण जुदा है, ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान पर्याय है, गुण की ही पर्याय है, और वो पूरे भाग में है, फिर भी वो एक समय की है, इसलिए उसको जुदा कहा है। इधर लेना, वो बुद्धि में लेना, ऐसा बाहर नहीं निकाल देना उसको, कि द्रव्य अपने पर्याय के साथ अभेद है। अभी आपका सोना जुदा है, लेफ्ट हैंड में सोना पहना है और राइट हैंड में सोने की बंगड़ी पहनी है, बराबर है ना? क्या बराबर है? देखो सोने की अवस्था क्या है, बंगड़ी, तो सोना कहाँ पर रखा, लेफ्ट हैंड में, और बंगड़ी कहाँ रखी, राइट हैंड में, तो क्या हुआ? तो सोने की बंगड़ी कहते हैं, तो बंगड़ी से सोना कोई जुदी चीज है? सोना बंगड़ी रूप परिणमित हुआ है अभी, परंतु वो कॉन्स्टेंट नहीं, उसके कायम है, वो बंगड़ी का बंगड़ी पर्याय बदल कर हमने हार बना दी, सोना तो कायम है, सोने के गुण बंगड़ी में भी थे और उसमें भी है कि नहीं, पीलास है, चिकास है, जो कुछ है उसका चमकीलापन है, वो सब उसमें है। अब यहाँ पढ़ेंगे आपको ख्याल में आ जाएगा। देखो ये साकर ने गड़पण कहीं बे जुदी चीज नथी, साकर के भी के गड़पण थी भरेली, भरेली एटले के अभेद एक स्वरूप ज छे, समझ में आती है ना बात? ये तो हमें रोज के अनुभव की चीज है कि नहीं है? एम भगवान आत्मा चैतन्य महाप्रभु शाश्वत वस्तु ए सम्यक दर्शन नो विषय, जेनी रुचि करिए आत्मा ने आत्म साक्षात्कार अने सम्यक दर्शन थाय। रुचि की बात है कि मैंने अभी तक मेरा स्वरूप ही नहीं समझा है, और मुझे ये सब अभी हम ये सब बेसिक चल रहा है। अपने पंचास्तिकाएं में हमने क्या सीखा है, छह द्रव्य सीखे ना, उसी में पांच अस्तिकाएं बताए, उसी का वर्णन चल रहा है। अभी यहाँ पर भी वही बात उन्होंने स्टार्टिंग में ले ली है कि द्रव्य क्या है, फिर वो उसके चैतन्य उपयोग भी ले लिया उसको, और उसके अन्य भी गुण बता दिए, यहाँ पर चेतना के भी भेद बता दिए। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखो ज्ञान की अपेक्षा हम कहीं ये द्रव्य है, ये गुण है, पर्याय है, ऐसे भेद कर करके समझने के लिए, वस्तु कैसी है इसलिए हमने उसको भेद करके समझा, परंतु वस्तु एक चीज है कि अनेक चीजें है? वस्तु एक है ना, वो आत्मा एक है कि टुकड़े टुकड़े वाला आत्मा है? एक है। तो आत्मा कैसा है पूछा आपको, तो कैसा है तो क्या कहेंगे, जो जानता है, जो देखता है, जो सुख से भरा है, जो ऐसा है वैसा है, वो सब हमने वर्णन किया आत्मा का, उसके विशेषण बनाए, वही तो उसके गुण है। तो और वो जो गुण है कि जानना जानना, यानी जानने का गुण है, तो हर समय में जानता रहता है, जानता रहता है, जानता रहता है, यानी कार्य हर समय कर रहा है ना, कि केवल उसमें ज्ञान गुण है और सारे न्यूट्रल ले बैठे, ऐसा है?
हर गुण अपना अपना कार्य कर रहा है, उसको कहेंगे पर्याय। अब यहां देखते हैं, आगे पढ़ना देखो, चैतन्यामृतना, नया पैराग्राफ, चैतन्यामृतना पूर्थी, इमने शब्दों घणो घना थोड़ा पड़े छे, चैतन्यामृतना पूर्थी दल पड़ू छे ने, यानी उसका बिल्कुल घन स्वरूप, उसको दल कहा। जागृत प्रकाश चैतन्य ज्योत, जागृत प्रकाश नु सत्व नु सत्व एथी भरपूर भरेलू स्वरूप छे। प्रकाश यानी यहाँ ज्ञान को ही प्रकाश कहते, वो स्वपर प्रकाशक कहते हैं ना, चैतन्य को ही प्रकाश कहा, ये कोई अन्य दिव्य प्रकाश नहीं दिखता है, लोग ऐसा समझते हैं। मैंने बोला उस दिन वो फोन आया था ना, अभी ध्यान करें कि सामायिक करके क्या करें, ऐसा वो प्रकाश प्रकाश बोलते, वो मैंने बोला ऐसे प्रकाश विकाश कुछ नहीं दिखता, वो पुद्गल का है। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, लोग ऐसा समझते हैं आत्मा के अनुभव ने कोई दिव्य प्रकाश दिखा मुझे, ऐसा सफेद सफेद दिखा, कोई कहता है मैं ऐसा लगा मुझे कि मैं ऊपर ऊपर हाइट पर जाके ऐसा हल्का हल्का होकर मैं ऊपर चला गया हूँ, शायद विक्रिया करते हो गए भ्रम ही है सारा, कि अंदर ही अंदर सोचते ना स्वयं, ये कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चैतन्य का लक्ष्य ही नहीं है तो मुझे क्या हुआ, समय दर्शन हुआ कि नहीं, अभी कुछ क्या, कुछ तो हुआ, तो ये हो क्या हो रहा है उसकी तरफ लक्ष्य है उसका। और ये भी शिविरों में जो है ना, आपको ये जो सारे विकल्प सविकल्प की बात चलती है शिविरों में, परंतु उसके द्वारा अपना स्वरूप को ख्याल में लेना है, उसी में रहते हैं वो, उसे कुछ जो रटना बिटना चलता है, कोई एक शब्द बोलता है फिर बाकी सब ऐसे ध्यान में लीन हो जाते हैं, कुछ तो हुआ, हाँ आपको हो गया समय दर्शन, ऐसा चलता है, अपने में यही बात चलती है। आपको हुआ क्या? अच्छा हुआ, देख के आया। और उनके ये बारीक यानी जो बेसिक बाबत में इतनी सूक्ष्म नहीं, बेसिक बाबत में इतने बड़ी बड़ी भ्रांतियां है, और फिर वो समझते नहीं हमको समय दर्शन हो गया क्योंकि हमने वो ध्यान का शिविर अटेंड किया। हाँ जे विचारवंत डाया पुरुषों ने गोचर एटले गम्य छे, ये ऊपर हो गया क्या? अशुद्ध भावनी व्याख्या, ऊपर का एक लास्ट लाइन रह गई थी, शुद्ध भावनी व्याख्या चाली छे। शुद्ध भाव किसको कहा था? स्वभाव भाव को। एटले अहीं कहे छे के आत्मा, के आत्मा शुद्ध भाव एटले आत्मा, उसी को आत्मा कहा, उसी को खरेखर आत्मा कहा, और बाकी जो पर्याय वाले जो तत्व है उसको बहिर तत्व कह दिया, खरेखर उपादेय नहीं है ऐसा कह। हाँ स्वभाव भाव ऐसा कहा था, पारिणामिक भाव जनु लक्षण छे वो कारण परमात्मा, ऐसा वहां शब्द आया था पहले। जे विचारवंत डाह्या पुरुषों ने गोचर छे, गोचर छे ने गम्य है ने, उनके अनुभव में आता है। जे विचारवंत यहाँ अवाय निर्णय करनारा जीवों ने एवा विचारवंत डाह्या पुरुषो प्रेक्षावताम गोचरे, एम छे ने प्रेक्षावताम गोचरे, जेनी विचारधारा स्वभाव सन्मुख थाय छे एवा विचारवंत डाह्या पुरुषो ने गम्य आत्मा, आओ आत्मा छे। आ छे पर्याय, अत्यार सुधी जे कीधु ए कीधु ए शुद्ध भाव ध्रुव, अने विचारवंत डाह्या पुरुषो ने गम्य छे पर्याय, विचारवंत ए ज्ञान नी दशा, आओ आत्मा छे एवा विचारवंत नी निर्मल पर्याय ने गम्य छे। अने कर विचार तो पाम कहते ना, वो कुछ भी विचार करे तो पामे ऐसा नहीं है, वो सही विचार होना चाहिए, सही भेद ज्ञान होना चाहिए, तेनाथी ते जानी शकाय एवो छे। हा मुमुक्षु पूछते डायो एटले विचारवंत एज डायो छे, विचार करनारो डायो छे, आ आत्मा एने डायो कहे छे। डाया तारू डाहा पण क्यारे कहिए, ओलामां नहोतुं आवतुं વાંકાનેરના હતો ને ઓલો ડાયાભાઈ ધોળશા, એ બહુ માને છે, મરવા પડ્યો ત્યારે બોલ્યો ડાયા તારું ડાહા પણ ક્યારે કહીએ, હવે મરના ટાણે શાંતિ રાખતું, અત્યાર સુધી બધા નાટક પાડ્યા ને,
એક એક રાતના 1500 તે દીવો બાબુભાઈ ખબર છે ને, આપણે મીરાબાઈનું નાટક જોવા ગયા હતા ભરૂચ, મીરાબાઈનું નાટક એનું હતું, જોવા ગયા હતા નહીં ઓલા મોહનલાલજી આવ્યા હતા, ડાયાભાઈ ધોળશા, એક રાતના 1500 તે દીવો, એ કઈ સાલ હશે, સંવત 1965-66 સાલની વાત છે, ત્યારે શરીર જુવાન, એક એક રાત એમ કાઠી અઠવાડિયાના 3 પાડતા, 4,500-5,000 પેદાશ, એને કોઈ તો એને એવું તો નાટક કરને વાળો કોઈ, હા હીરો હોગા કોઈ એક્ટિંગ કરને વાળા, 65 સાલમાં અમને તો એમ લાગે કે ઓહો હો, એક રાતના 1500 એ મરવાટાને એને હે હે થઈ ગયા, એને એલાડાયા, તે આ બધું અત્યાર સુધી કર્યું ને, હવે મરવાટાને સમાધાન શી રીતે કરવું, એમ એ થાય, આ માંતરડા કફ ને આને આ બધા વાટું જોવે, ભાઈને કેમ છે, ભાઈને કેમ છે, ભાઈ ડાયા થઈને પંકાના હોય એ મરવાટાને હાય હાય કરે, સમજાનું કાંઈ, એને કિતના ભી ક્યુ છે, યુવાનીમાં જોશ ક્યાં હોય, પૈસા વાળા હોય, કુછ ક્યાં કરેગા ઉસ સમય, ડાયો એટલે આત્માને સમજવાની વિચારધારામાં વર્તે તે ડાયો, વિચાર અને ડાયાભાઈને જુદા પાડતા હતા, ખબર છે, ખ્યાલ છે ને, સમજાણો કાંઈ, વિચારવંત ડાયો એમ એમ છે, એ તો ખ્યાલ છે એટલે પહેલેથી ઉપાડ્યો, અમને ખબર નથી એ વિચારવંત એ ડાયો એમ, કોનો વિચારવંત, તો આવો ધ્રુવ સ્વભાવ જે ભગવાન આત્મા, એનો વિચારવંત તે ડાયો, એને અપને ધ્રુવ સ્વભાવ ભાવ સંબંધી વિચાર કરને વાળા ગોડાયા, ત્યાં ભેદ પાડવા, તે ત્યાં બે ભેદ પાડવા છે, વિચારવંત ડાયો ભાઈ, એ વિચારવંત તે ડાયો, કોનો વિચારવંત, આવો આત્મા એક સમયમાં પરમાત્મ સ્વરૂપ છે એનો વિચારવંત ડાયો, એવા પુરુષોને એવા આત્માને ગમ્ય છે, પુરુષ શબ્દ એકલો કાંઈ આ પુરુષ વેદવાળો એમ કાંઈ નહીં, વિચારવંત ડાયા આત્માને ગમ્ય છે, પુરુષ કહેને છે આત્મા કહેના હૈ, વિચાર કરને વાલે આત્મા કો વો ગમ્ય હૈ, સમજાનું કાંઈ, આહા હા, 8 વર્ષની બાળિકા પણ આત્મજ્ઞાન કરે તો એને વિચારવંત ડાયા કહેવામાં આવે છે, પુરુષ કહેને છે ઉસકે કેવલ વો પુરુષ, સ્ત્રી પુરુષ વાલે પુરુષ વો નહીં સમજના, એ પુરુષ એટલે આત્મા, સમજાનું કઈ, આ પુરુષ નહીં, આ તો એક ઓળખવાની ચીજ છે, આ તો જળની માટીની ચીજ છે, આમાં પુરુષ કોને કહેવો, આ તો માટી જળ રસકણ છે, આ એને શરીર, અંદર પુરુષ વેદનો ઉદય છે એ વિકાર છે, દેખો શરીર તો જળ હૈ ઓર અંદર જો ભાવ વેદ કહેતે વો વિકાર હૈ, એમાં આત્મા ક્યાં આવ્યો, એ આત્મા નથી, એને દ્રવ્ય પુરુષ જો શરીર હૈ વો જુદા, પુરુષ વેદ કો ઉદય વો બાત જુદી, એ આત્મા નથી, આ પણ આત્મા નથી, અને ઉદયનો વિકલ્પ થાય એ પણ આત્મા નથી, સમજાનું કાંઈ, સમજ મેં આતી બાત, શરીર ભી આત્મા નહીં હૈ ઓર અંદર જો ભાવ વેદ હૈ વો ભી આત્મા નહીં હૈ, અને વિકલ્પને જાણતો પ્રકટ જ્ઞાનનો પર્યાય એ પણ આત્મા ધ્રુવા શુદ્ધ છે એ નહીંથી, સમજાણું કાંઈ, ક્યાં કહા, ઉસકો જાણને વાલી જો પર્યાય હૈ વો ભી વો શુદ્ધ આત્મા નહીં હૈ, ક્યોંકિ હા આત્મા કિસકો કહા, કિસ નય સે આત્મા કહા ઉસકો, કિ શુદ્ધ ભાવ કો, ઉસ શુદ્ધ ભાવ આત્મા રૂપ વો નહીં હૈ, વો કિસકો, બાહ્ય શરીર કો ઓર અપને વિકાર કો જાણને વાલી જો જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ વો ભી યે સ્વભાવ રૂપ આત્મા વો નહીં હૈ, સમજ મેં યે બાતે, યે જો અપના વિષય ચલ રહા હૈ ઉસ પર હી બાતે ઘટાય ઘટિત કર રહે, નિરાલંબી માર્ગ બાપુ સૂક્ષ્મ છે એને અહીં વિચારવંત અને ડાહ્યા કહ્યા છે, બીજા વિચારી વિચારી વિચારીને ઊંધા વિચાર કરીને બધે અવળાને પકડે,
क्या कहा, वो बहुत विचार करते, बहुत विचार करते और उल्टा पकड़ लेते हैं। यानी सही विचार करेंगे तो ही ये मिलेगा मार्ग, तो गलत सुनेंगे, गलत विचार करेंगे, अपने को ऐसे ही मान लेते ना, भ्रम रूप अपने को बिल्कुल विपरीत मान लेते हैं, मैं शरीर हूँ या अन्य जो, मैं राग रूप हूँ, मैं पुण्य रूप हूँ, मान लेंगे अपने को, तो वैसा ही अनुभव चलेगा उसको। वो आता है ना शास्त्र में, आता है एक स्टोरी, आपने बताई थी ना उस दिन, एक आदमी बैठा था घर के बाहर बरामदे में कहो, या पहले के जमाने में आता था ना वो उसी कहते बाहर, तो रास्ते पर से वो भैंसे वगैरह आती जाती थी, तो उसने क्या समझ लिया, वो ध्यान करने लगा कि मैं भैंसा हो गया हूँ, मेरे सिंह आ गए हैं ऐसा, और मेरे सिंह बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, और वो ऐसे जाके वो कोने में अटक गए। अंदर पत्नी बुलाती है, चलो भोजन तैयार है, खाने को आओ। अरे मैं हिल नहीं सकता, मेरे सिंह अटक गए ऊपर। तो क्या उसने क्या है, भूताविष्ट कहते, इसने अपने स्वयं को ऐसा मान लिया है, ये भ्रम से मान लिया। आ विचारवंत डाया ए आने पकड़े, तो एने विचारवंत डायो कहवामां आवे छे, एने अपने स्वभाव को वो जानेगा, उसको अपने लक्ष्य में लेंगे तो वो विचारवंत हुआ। दुनियाना डाया लेपाय छे, लेपाय छे ने, ये दुनियादारी में जो अपने को बहुत चतुर समझता है, सियाना समझता है, लेपाय छे ने कर्म से बनता है, लेप कर्म का लेप कहता कहलाता है, कर्म थी रखड़े छे। देखो लिखा गे ए डाया कहवामां आवता नथी, भले वो कोई भी MBBS हो, कोई MD हो, के और MA LLB हो, और कुछ हमेशा कहते वो पूछ रहा है, कोई पदवी भी लगाए, ए मोटा मूर्ख छे एम कहे छे, जेना परिणाम मां नरक नी गति मळे, जेना परिणाम मां माखी अने गधेड़ा थाय, ए डाया छे ना। किसी भी पर्याय में जा सकता है ना, सूक्ष्म 14 जीव समास पड़े हैं, कहीं पर भी परिणाम के अनुसार जाता रहेगा, तो उसको डाया कौन कहेगा, ये कहते हैं। काहे की तकलीफ, तकलीफ कुछ नहीं, शुद्ध था और बाद में मिला ऐसा नहीं है, पहले से अशुद्ध ही था, जब मोक्ष में जाएगा तब शुद्ध हो जाएगा, अनादि से ही किसी न किसी पर्याय में अंदर त्रिकाली है, वो किस रूप से है, स्वभाव रूप से है, परंतु उसकी पर्याय क्या चल रही है, विकार रूप ही वो प्रकट है। देखो स्वभाव जुदी बात है, जुदी बात है ना, वो अभी किस रूप से वर्तमान में प्रेजेंट है, किस रूप से मैंने पहले एक बी का उदाहरण दिया था आपको, बीज है, आम की गुठली हमने बोई, तो आम की गुठली में हमें जब बोई तो हमें क्या नक्की किया हमने, इसमें से पूरा वृक्ष उगेगा, वो बीज देखकर आपको पता चलता है, मालूम है, हाँ ठीक है, और हमने वो काट के देखा अंदर, तो कुछ सामर्थ्य दिखा अंदर, वृक्ष का कुछ नहीं दिखा, अब वो बीज कुछ एक छोटा पौधा होगा, अब वहां पर भी पूरी सामर्थ्य पड़ी है, सामर्थ्य कहाँ दिख रही है, वो पूरा जो सामर्थ्य कहो, जो कुछ है वो सब उस पौधे रूप से भी अवेलेबल है अभी। ऐसे आत्मा में पूरी सामर्थ्य अनादि से पड़ी है, केवल ज्ञान रूप होने की, परंतु किस रूप है, निगोद में था, फिर वहां से निकला, अन्य अन्य पर्याय धारण करते अभी मनुष्य हुआ, तभी थोड़ी ज्ञान का थोड़ा विकास है, परंतु विकार वगैरह सब पड़े हैं, इसी रूप में अभी अवेलेबल है वो, ऐसा नहीं था कि पहले प्योर था और बाद में उसने धारण की, ऐसा कुछ नहीं है, और अंदर वो शुद्ध है ऐसा अलग सा पड़ा है ऐसा भी नहीं है, वो उसी रूप में विद्यमान है। वो ज्ञान का विषय है कि द्रव्य अपने पर्याय से जुदा नहीं है, उस रूप ही वो, जैसे मैंने अभी सोने का उदाहरण दिया, सोना बंगड़ी रूप ही है, पूरा का पूरा सोना बंगड़ी रूप है, वो पूरा का पूरा सोना ही हार रूप होने वाला है, ऐसे अभी पूरा जो जीव है वो मनुष्य, वो इसमें वो शरीर मिलाओ मत, शरीर तो जुदा ही जुदा है, पर यहाँ जीव की अपनी जो पर्याय चल रही, पूरा जीव यहाँ विद्यमान है कि नहीं है, तो उसमें उसका स्वभाव भी है, उसकी वर्तमान मनुष्य पर्याय भी है, और वो मनुष्य पर्याय में क्या लेना, उसके मनुष्य जैसे जो कुछ भाव वगैरह हो रहे हैं, अभी जितना ज्ञान का उघाड़ है, वो सब मिलकर एक मनुष्य पर्याय, जीव की अपनी मनुष्य पर्याय, वो समान जाति द्रव्य पर्याय वो वाली बात नहीं,
एक जीव है और कर्म है और शरीर है, उसकी बात नहीं है। कर्म और शरीर को जुदा ले लो, जीव की अपनी पर्याय चल रही है, मनुष्य पर्याय उसकी बात ले लो। मनुष्य संबंधी, मनुष्य जैसे आकार है, मनुष्य जैसे उसके सोचना है, ये थिंकिंग सब चल रहा है, ये क्या है, वो मनुष्य की उसकी पर्याय चल रही है। तो आत्मा अभी उसका पूरा स्वभाव उसी पर्याय रूप से विद्यमान है, फिर भी स्वभाव उस समय भी परिपूर्ण है ये कहना लेना है। यानी अभी मनुष्य पर्याय होने पर भी हमारा स्वभाव परिपूर्ण है और हम उस पर्याय का हम स्वभाव का लक्ष्य कर सकते हैं। अपने ही ज्ञान में वो ख्याल में लेना है हमको कि हमारा स्वभाव से मैं ऐसा हूं, तो उसकी प्रतीति हो जाती है।
देखो बात ऐसी है, आपको लड़की है क्या, क्या बेटा ही है सिर्फ? अच्छा, तो देखो आप, आपके पिता की अपेक्षा से बेटी हो और बेटे की अपेक्षा से माँ हो क्या, बेटा ही हो? देखो बात ऐसी होती है, एक ही वस्तु को,
हाँ सुनो जरा, आवाज थोड़ी धीमी है इनकी और वो माइक बराबर काम नहीं चल रहा है, वो हमेशा का उदाहरण दे रहे हैं माँ और बेटा का।
तो बात ऐसी है कि हम अपने को कैसा देखते हैं कि पिताजी की अपेक्षा से मैं बेटी हूँ और मेरी बेटी की अपेक्षा से मैं माता हूँ, बात बराबर है ना? एक ही वस्तु को अलग अलग एंगल से देखा जाता है। वैसा द्रव्य जो है वो द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाता है तो उसमें पर्याय नहीं आती है। और ये अनादि काल से यह जीव शुद्ध स्वभाव से ही है, द्रव्य के जो स्वभाव है वो शुद्ध स्वभाव ही है, लेकिन पर्याय में जो है वो पर्याय में अभी विकार है, विभाव रूप परिणमित हो रहा है। आपका जो कहना था कि ये शरीर, मनुष्य शरीर में ये आत्मा आया तो उसको दुख होता है क्या?
नहीं, शरीर में तो अनंत से है, लेकिन वो शरीर में है तो तकलीफ उसको होती है क्या?
वही तकलीफ कहो, दुख कहो, एक ही हो गई ना बात।
मतलब शरीर में तो अनादि से है,
शरीर अनादि से नहीं है, हर कुछ साल के बाद बदलता है। आत्मा अनादि का है, शरीर अलग अलग मिलेगा, लेकिन शरीर अलग अलग, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। वो अपनी स्वयं की मूर्खता के कारण वो शरीर में गिराता है। मेरा स्वभाव कैसा है तो मैं अशरीरी हूँ, लेकिन हमने माना किधर है? सिद्ध भगवान जो है वो जैसे द्रव्य के स्वभाव से वैसे पर्याय में भी स्वभाव प्रकट हुआ है, और हमारा जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो पर्याय की ही बात चल रही है। हमें जो सुधार बिगाड़ करना है वो पर्याय में ही होगा, द्रव्य को हम कुछ टच नहीं कर सकते, यानी वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अनादि का है और अनंत काल तक रहेगा। और हमने ऐसे परिणाम किए कि हमको मनुष्य पर्याय मिली, किसी को तीरंजी की पर्याय मिली, किसी को नारकी की पर्याय मिली। वो अपने स्वभाव, अपने पर्याय में हमने ऐसे कोई अलग से विचार रखे, विकार किए, इसलिए हो रहा है। लेकिन आत्मा को कुछ तकलीफ नहीं होती है उस शरीर से, ख्याल में? तो यहाँ तो हम
तकलीफ उसको राग द्वेष की है।
हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो तकलीफ हो रही है कि स्वयं के विभाव भाव की हो रही है। शरीर अन्य द्रव्य है, आत्मा अन्य द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करेगा, ये बात निश्चित है ना? यानी हम बेसिक जो हमको प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके आधार से विचार करेंगे तो अपने प्रश्नों का उत्तर अपने को ही प्राप्त होगा। कोई बात नहीं, पूछना ऐसी कोई बात हो।
उसके तकलीफ है अपने भावों की, कैसे
जो उसको सोच रहा है, ये पुण्य पाप के परिणाम कर रहा है, राग द्वेष के परिणाम कर रहा है, मोह है, मिथ्यात्व है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और ये इसकी तकलीफ है। और मानता क्या तकलीफ है, वो बाह्य चीजों की प्रतिकूलता है इसलिए मुझे तकलीफ है। और मैं भी किसको माना, शरीर को मैं माना, यानी ये सारी जो मिथ्या भ्रांति है उसी की तकलीफ है उसको। पर उसको वो सोच विचार नहीं है कि मैं तकलीफ में क्यों हूँ, और मानता क्या, ये दूसरा कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, ईश्वर ने कोई मेरी परीक्षा ले रहा है इसलिए मुझे तकलीफ है, मैं या ऐसा विकर्म का नाम सुना इसलिए कर्म मुझे तकलीफ दे रहा है। परंतु तकलीफ क्या है वही उसको पता नहीं है, ये उसका जो भ्रम है वही तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है।
इस भ्रम को ही मिथ्यात्व कहते हैं। इसलिए पहले में पहले अपनी मान्यता सही होनी चाहिए, और मान्यता सही होगी तो आगे की बातें सही चलेगी, लेकिन मूल में ही कहीं अटके हुए हैं तो आगे बात बढ़ती नहीं है। और हम ऐसा समझते कि संयोगों से हमको दुख हो रहा है, शरीर का संयोग मिला, लेकिन संयोग तो पर पदार्थ होता है, वो तो हमें दुख दे ही नहीं सकता है, ना हम उसको दुख दे सकते हैं ना वो हमको दुख दे सकता है। ये हमारे में जो राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, मिथ्या मान्यता के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए हम संसार में अलग अलग शरीर में भटक रहे हैं। और इसी से हमें अगर छुटकारा चाहिए हो तो अपना जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसको देखना चाहिए और उसको समझकर उसी में एकाग्रता करे तो बाकी की बात सीधी चल जाएगी। हाँ चलो,
यानी हमें आगम का अभ्यास इसीलिए करना है कि जो भ्रम अनादि का पड़ा है वो भ्रम को हम कैसे दूर करें। सही वस्तु स्वरूप ख्याल में आते ही भ्रम अपने आप छूट जाने वाला है, परंतु उसके लिए हमें बिल्कुल जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो उपदेशित हमें जो मिला है यहाँ उपदेश, हम तो इतने तो भाग्यवान है ना, अभी महावीर भगवानों के इतने साल हुए फिर भी ये मूल उपदेश अभी कुछ बाकी शेष रहा है और जो हम तक पहुंचा है, जिसकी होनहार है उसको वैसे सब निमित्त भी मिल जाते हैं। अब यहाँ हम आगे पढ़ेंगे, देखो ये पेज नंबर 73 नीचे का, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। उसमें ऊपर से पांचवी लाइन थी ना, ए विकल्पने जानतो प्रकट ज्ञान नो पर्याय पण आत्मा ध्रुव आ शुद्ध छे, ए नहीं थी, नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए ना, ए ज्ञान नो पर्याय पण आत्मा ए नहीं, ए नहीं थी, कुछ ए नहीं, ऐसा चाहिए ना, यानी ज्ञान के पर्याय वो आत्मा नहीं है। उत्तर की पांचवी लाइन, हाँ यह नहीं चाहिए वहाँ पर, आ शुद्ध छे ए नथी, निरालंबी मार्ग बापू सूक्ष्म छे, एने ही विचारवंता ने डाह्या कह्या छे, ये आगे भी पढ़ा था हमने, बीजा विचारी 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 ने ऊंधा विचार करीने बधे आवड़ा ने पकड़े, जो भ्रांति सहित विचार करता है बहुत विचार, ये हो गया था ना, हाँ माखिया नहीं नहीं माखिया ने गधेरा था, हुआ था हुआ था हुआ था, माखी की बात याद आई ना, लास्ट पैराग्राफ, हम हुए थे वो याद नहीं, यहाँ पढ़ा था वही। लास्ट पैराग्राफ, आवो भगवान आत्मा एना विचारनी मतीनी धाराए डाया पुरुषो एना तरफ वळ्या छे, एने ते गम्य छे, क्योंकि वो निर्णय वाली जो अपने ज्ञान की पर्याय उस पर विचार वो भी आता है ना, तत्व विचार में तद्रूप होकर परिणमना, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, तो समय में समय दर्शन हो जाता है, जो कोई कर्मों के उपशमादि होना है वो हो जाते हैं, इसका कर्तव्य क्या है, तत्व विचार, यानी वो सही तत्व विचार करने लग जाए तो, एटले के राग ने गम्य नथी पुण्य ने गम्य नथी, यानी पुण्य करने से या कोई राग विकल्प करते मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा रटना 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 उससे कुछ नहीं होने वाला, पुण्य से भी नहीं, व्यवहार ने गम्य न थी कोई क्रियाकांड थी वो समझ में आवे ऐसी भी बात नहीं है, समझानो काई कोई कषाय ने मंदता करी, यानी कोई भले परिणाम जो तीव्र कषाय छोड़ दिए राग निमंदता दयादान भक्ति व्रत खूब कर्या माटे इनाथी आत्मा जनाय जाए ना बिल्कुल नहीं जरिए नहीं। अरे वो नमालो शू करवा तू माने छे इन्हें अपने आप को ऐसा क्यों मान लिया कि ये इसी चीजों से गम्य हो जाए एवं रागनी मददानी सहाय होए तो ज हूँ जनाऊँ ए तो ते तारा आत्मा ने नमालो कल्पी ने नमालो समझते कमजोर हिंदी आ बात लीधी छे ए नमालो एवो नथी समझाणू काय अभी यही रुकेंगे जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो
नमो आर्यं नमो सिद्धं नमो आयर्यं नमो वज्रायणं।